बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आमदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल और जवाब की बरह रास्त तशीस को लेकर फेडरल असम्बली का आमदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमात इस्लामी माजी हाल और मुस्तकबिल सिलसिला गुफ्तगू की आज पाँचवीं नशस्त है, आगाज़ करते हैं। हम सब हमने आपसे जाना था कि जमात इस्लामी इसको एक बड़ी अपनी कामयाबी करार देती है कि जो करारदाद मकासद मंजूर की गई, मौलाना ने जो दस्तूरी निकात पेश किए मुल्क भर में, उसके लिए तहरीक चलाई गई और हमने ये देखा कि बज़ाहिर कामयाबी भी हासिल हुई। मौलाना मौदूदी को 1950 में तकरीबन 20 माह की कैद के बाद रिहा कर दिया गया। हम सब इससे आगे के जो दौर हैं 2-3 साल, उनके मैंने वाक़यात का जब इस्तक़सा किया तो 2-3 चीज़ें हैं जिस पर मैं चाहता हूँ आपका तबसरा तलब करूँ। इस दौरान एक बड़ा वाक़या ये होता है कि मौला मौदूदी अलैहिर्रहमा को फिर दोबारा से गिरफ़्तार करके सज़ाए मौत सुनाई जाती है। क़ादियानी मसला एक आपकी किताब थी, किताबचा आपने लिखा, उसकी पादाश में उसमें हुआ क्या था, एक मुख्तसर सा मैं इकतबास पढ़ के गांधी साहब की जानब बढ़ूंगा कि जिस वक्त सज़ा का ऐलान किया गया, मौलाना मौदूदी ने उस पर क्या रद्दमल दिया, एक बड़ा लीडर किस तरह की कैदोबंद की सबूतों से गुजरा। मेरे सामने ये मियाँ तुफैल मोहम्मद साहब की ज़ुबानी एक इकतबास है। वो कहते हैं कि जेल की रुदात सुनाते हुए कि हमने बाकी नमाज मुकम्मल कर ली तो इनमें से बड़े फौजी अफसर ने जो मार्शल्ला कोर्ट का सदर था, उसने पूछा मौदूदी कौन है। मौला ने अर्ज़ किया मैं अबुल आला मौदूदी हूँ। तो उसने कहा आपको क़ादियानी मसला किताब तसनीफ़ करने पर मौत की सज़ा दी जाती है, इसके खिलाफ कोई अपील तो नहीं हो सकती, आप गवर्नर जनरल से अलबत्ता रहम की अपील कर सकते हैं। मौला ने बिला तवक्कुफ़ फरमाया मुझे किसी से कोई रहम की अपील नहीं करनी, ज़िंदगी और मौत के फैसले ज़मीन पर नहीं आसमान पर होते हैं, अगर वहाँ पर मेरी मौत का फ़ैसला हो चुका है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत से नहीं बचा सकती, और अगर वहाँ से मेरी मौत का फ़ैसला नहीं हुआ तो दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकती। इसके बाद उसी अफसर ने कहा कि आपने मार्शल्ला के बारे में रोज़नामा तस्नीम में जो बयान दिया है उस पर आपको मज़ीद 7 साल कैद व मुशक्क़त की भी सज़ा दी जाती है। आगे ये लिखते हैं कि कोई आध घंटे के बाद हेड वार्डन और उनके साथ कुछ दूसरे वार्डन आए और उन्होंने मौलाना मौदूदी साहब से कहा कि तैयार हो जाएं, वो फांसी घर जाएंगे। इस पर मौलाना मौदूदी साहब ने इत्मीनान से अपना खुला पैजामा तंग पैजामे से बदला, वो जो घर से बाहर जाते वक्त पहना करते थे, सर पर अपनी स्याह कराकुली टोपी पहनी और चप्पलें उतार कर स्याह कुरगाही जूता पहना और अपना कुरान मजीद लेकर हम सब से गले मिलकर नहायत इत्मीनान से फांसी घर की तरफ रवाना हो गए। अब मौला मीना सिलसिलाई कहते हैं कि मौला मौदूदी साहब की वो कमीज और पैजामा और टोपी कभी सीने से लगाते, कभी अपने सर पर रखते, कभी आँखों पर लगाते और बेतहाशा रोते हुए कहते कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि मौला मौदूदी साहब इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मौला मौदूदी बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि खुदा के यहाँ मौदूदी साहब का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। चौधरी मोहम्मद अकबर साहब भी रोते हुए कमरे से बाहर निकलकर सहन में चले गए और ये मियाँ तुफैल मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं भी रोता हुआ सहन में से एक तरफ निकल गया और सारी रात इसी तरह गुजर गई। अगली सुबह वार्डन ने आकर बताया कि मौला मौदूदी तो अजीब आदमी हैं, मालूम होता है कि उनको ये अंदाज़ा ही नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो फांसी घर गए, वहाँ का लिबास पहना, जंगले से बाहर पानी के घड़े से वजू किया, इशा की नमाज़ पढ़ी और टाट पर लेटकर थोड़ी देर बाद खराटे मारकर सोने लगे, हालांकि उनके आसपास फांसी घर के दूसरे कैदी चीखों पुकार कर रहे। फिर इसके बाद कहा जाता है कि इंडोनेशिया की इस्लामी पार्टी ने, बाकायदा उनके वज़ीर आज़म ने और दुनिया भर में आलम अरब के लोगों ने हुकूमतों से राबता किया और फिर हुकूमत पर प्रेशर आया तो उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद से तब्दील कर दिया गया। हम सब मुझे बताइएगा आपका क्या अपना यादाश्ते हैं, तज़िया है खुद, आपने उन लोगों से बराह रास्त भी कुछ बातें सुनी होंगी, ये मामला क्या हुआ था, यानी क़ादियानी मसला, क़ादियानी तहरीक उठी, उसमें मौलाना मौदूद ने कोई किरदार अदा किया, कोई किताब लिखी, उस पर उनको सज़ाए मौत दी गई, और ये जो दास्तान अजीमत हमारे सामने आती है कि एक बड़ा लीडर जिसको इस तरीके से काल कोठरी में डाल दिया जाए लेकिन वो अपनी अजमत अपने इस्तकलाल पर पूरी तरह से कायम रहता है।
मौलाना सैयद साहब मौदूदी बड़े आलिम थे, बल्कि बड़ी तारीख साज शख्सियत थे, इसी वजह से हम मोहब्बत और एहतराम के साथ उनका जिक्र कर रहे हैं। उसके साथ बड़ी गैर मामूली सीरत और किरदार लेकर पैदा हुए। मैंने तो उनको बहुत करीब से देखा है, उनके मामलात देखे हैं, उनके घरेलू हालात का बराह रास्त मुशाहदा किया है। वो हर लिहाज से एक मिसाली शख्सियत थे। उन्होंने जिस चीज़ को हक समझा उसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। हक क्या है उसको वो जानेंगे, इस्तदलाल की बुनियाद पर जानेंगे, उसमें इंसान है, बड़ी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये कि जिसको वो हक समझ लेते थे उसके लिए फिर अपना सब कुछ निसार कर देने के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। उनको जब कभी कैदोबंद की सोबतों से दोचार होना पड़ा है तो वो इसी शान के साथ गए। उनके बहुत से वाकयात हैं, बड़े दिलचस्प वाकयात हैं। एक मरतबा गिरफ्तारी से पहले बाहर निकलते उन्होंने कहा कि ज़रा एक पान दे दीजिए। पूछा गया कि क्या इरादे हैं, फरमाया तलाक दे रहा। तो पूछने वाले ने पूछा क्या रजाई तलाक है, उन्होंने कहा कि हाँ, चले गए। आम उनका मिजाज यही था कि कभी दरख्वास्त नहीं करते थे। जब तक जेल में रहे पान नहीं खाया, बाहर निकले तो सबसे पहले पान तलब की। और रजाई तलाक उन्होंने इसी मानी में कहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तो रजू कर लूँगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि वो जब गए तो ख़ुद बयान करते हैं कि मैंने सिगरेट की डिबिया निकाल कर प्रेसिडेंट की मेज़ पर रख दी और कई साल के बाद वापस आके वहीं से उठा ली। उस दौरान मैं कभी उसकी दरख्वास्त नहीं की। उनकी अहलिया जब दुनिया से रुख्सत हुई हैं तो मालूम है कि कला अहमदनगर की कैद के दौरान में हुई हैं। उसको उन्होंने अपने एक ख़त में जो गुबारे खातिर में है बयान किया है, उसमें देख लीजिए। वो इसके लिए आमादा नहीं हुए कि अदना दर्जे में भी दरख्वास्त करें कि उनको जनाजे में जाने दिया जाए या उनको थोड़ी देर के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया जाए। तो ये कुछ और ही दुनिया के लोग थे, बड़ी गैर मामूली शख्सियात। इसी वजह से अब जब बाज़ लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे ज़माने के सियासतदानों में कोई आप लोगों को नज़र नहीं आता जिसके लिए आपके दिलों में मोहब्बत हो, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वह दरेगा नीस्त माशूक के सजावारे गज़ल। कोई ऐसा माशूक पैदा कीजिए जिसके लिए गज़ल कही जा सके। हम लोगों ने तो इन लोगों की आंखें देखी हैं और हम ये जानते हैं कि इस सतह के लोग ये हुआ करते थे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जिस तरह वो जेल का वक्त गुजारते थे, जैसे वहाँ पे दरस व तदरीस में मसरूफ़ हो जाते थे, ऐसे लगता था कि जैसे मामूल की सरगर्मियों कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अपनी अहलिया को जो ख़त लिखा है कि इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जीते जी मुझे दीन और दुनिया दोनों की जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया और वो जिम्मेदारियाँ खुद उठा ली। तो गोया जेल में जाना भी इस पहलू से था। इसी तरह से मुझे कोई दरख्वास्त नहीं करनी, उसके बारे में तफहीमुल कुरान में लिखा है, उनको तकलीफ़ हो जाती थी, दाद कहते हैं उसको, यानी कुछ फुंसियाँ सी निकल आती हैं टांगों पर भी और इस तरह। तो वो ख़ुद लिखते हैं कि ऐसा ही हुआ, मैं जब जेल में गया तो मरض़ बहुत कर आया, तो मैंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इन जालिमों से कोई दरख्वास्त नहीं करूँगा, इस वजह से अब तू ही कर्म करने वाला है। खुद लिखते हैं कि उसके बाद वो मरज़ ऐसा गायब हुआ कि बरसों तक लौट के नहीं आया। तो इस ईमान के साथ उन्होंने ये सारी जद्दोजहद की है, इस यकीन के साथ वो ये समझते थे कि मैं अल्लाह के दीन का कलमा बुलंद कर रहा हूँ। हम जब कभी उन पर तनकीद करते हैं या उनकी बाज़ आरा से तदाबीर से इख्तलाफ़ करते हैं तो ये उनकी इस अज़मत के एतराफ़ के साथ करते हैं, और इस तरह लोगों को भी ये बताते हैं कि पैगम्बरों के सिवा कोई गलतियों से पाक नहीं हो सकता। बड़े लोगों पर नक्द करना आपका हक है, इस्तदलाल के साथ आप तनकीद करें, लेकिन ये कि उनका इस्तिख़फ़ाफ़ करना या उनको इस्तेहज़ा का निशाना बनाना या उनके नाम रखना, ये चीज़ तहज़ीबी शराफ़त के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। आप अबू हनीफ़ा और शाफ़ी से इख्तलाफ़ करें, लेकिन ये समझ लें कि ये बड़े गैर मामूली लोग हैं और हमारी उम्मत की मीरास असासा है। यही वो लोग हैं कि जिनकी तरफ हम इल्म के लिए रुजू करते हैं, सीरत व किरदार के लिए रोशनी हासिल करते हैं। उससे पहले सहाबा किराम की जमात है। बदकिस्मती है इस उम्मत की कि इसमें ऐसे लोग गिरोहों की सूरत में पैदा हो जाते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही इसके सिवा कुछ नहीं होता कि वो अपने असलाफ के कफन नोचते रहे। तो मैं तो हमेशा ये तवज्जो दिलाता हूँ कि इज्जत और एहतराम के साथ मामला करें, नक़द करना ये ज़रूरी है। यानी दीन की खिदमत में हम इसको गवारा नहीं कर सकते किसी गलत चीज़ की ताईद करते, बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, इसमें इस्तेलाल की ये गलती है, नतीजे की ये गलती है, इज्तिहाद की ये गलती है, फहम की ये गलती है, ये सब बातें होंगी, लेकिन इज्जत और एहतराम के साथ। तो इसमें तो अगर वाकयात सुनाना शुरू कर दिए तो दसियों होंगे। मेरा ख्याल है आप अपनी बहस को आगे बढ़ाएं।
ठीक है, हम सब ये बताइएगा कि जिस अजीमत से उन्होंने जेल गुजारी उसका आपने जिक्र किया, और ये कितने बड़े लोग थे, इससे कतः नज़र के उनके नज़रियात में कहीं इख्तलाफ पैदा होता है। मुहर्रिक क्या बना था, यानी ये तहरीक ख़त्म नबूवत जो है हमारे तो जहनों में ही है कि भाई 1974 में असम्बली ने फैसला किया, लेकिन इसका आगाज़ 1950, उससे भी पहले, बल्कि तकसीम से पहले से ही हो जाता है। जमात इस्लामी इसमें क्या बाकायदा तौर पर शामिल हुई थी, मौला ने जो ये किताबचा लिखा खुद मिर्ज़ा साहब की इस तहरीक के ऊपर, उसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा कि उसमें इस्तदलाल किस तरह से किया गया, और ये हुकूमत ने उनको उसकी बुनियाद पर सहमत कैसे दे दी।
मौलाना सैयद अवलुल्लाह साहिब मौदूदी का और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये था कि हम जो मुतालबा निज़ाम इस्लामी लेकर उठे हैं उस पर सारी तवज्जोहात मरकूज़ करनी चाहिए। ये जुज़वी और इतलाकी मामलात, यानी फलां गिरोह के साथ क्या मामला करना है, फलां जमात के साथ क्या मामला करना है, ये सब इतलाकी मामलात हैं, यानी ये एप्लीकेशन के मामलात हैं। बुनियादी बात यह है कि ये एक नया मुल्क वजूद में आ गया है। पहले तो ये तय होना चाहिए कि इस मुल्क की हैत क्या बनती है, इस रियासत की सूरत हम क्या बनाते हैं, पहले इसको तय होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने वो चार निकात पर मुश्तमिल मुतालबा निज़ाम इस्लामी पेश किए, जिस पर आगे चल के गुफ्तगू करूँगा मैं और बताऊँगा कि उसमें गलती क्या है, वो एक अलग बहस है। लेकिन वहाँ जो बात कही गई थी वो ये थी कि पहले इस ममलकत की नौईयत तय हो, ये अल्लाह के दीन का एतराफ़ करे, ये अपने आप को एक इस्लामी ममलकत बनाने का फ़ैसला करे। जब ये तय हो जाएगा और सारे लोग अपनी जद्दोजहद का मरकज़ इसी को बनाएंगे, तो अब गोया इस्लाम की हुकूमत उनकी ताबीर के मुताबिक कायम हो गई, या हुकूमत इलाहिया कायम हो गई, या दीन की इकामत हो गई। ये उनकी असलाहें हैं, ताबीरें हैं, इन सब पर गुफ्तगू हो सकती है। तो जब ये हो जाएगा तो उसके ज़ैल में जिस तरह दूसरे मसाइल हल होंगे, उसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के पैरोकारों का मसला भी हम हल कर लें। ये उनका असल मौक़िफ़ था, और जमात इस्लामी अपने निकात में कोई इजाफा करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एक तहरीक उठ खड़ी हुई। अब हम उस तहरीक के पस मंज़र पर गुफ्तगू हम करेंगे तो बहुत दूर बात निकल जाएगी। उसमें बड़े नाजुक हालात पेश आ गए। आपको मालूम है कि उसमें गालिबन लाहौर में या बाज़ इलाक़ों में मार्शला तक लग गया। उसमें उन्होंने फिर तफहीम के लिए ये बताने के लिए कि मसला क्या है, जिस तरह के एक आलिम रहनुमाई करता है, कादियानी मसला के उनवान से किताब लिखी।
ठीक,
उसमें उन्होंने उस मसले को वाज़ह किया है, यानी इसका पस मंज़र क्या है, इसकी नौईयत क्या है, इसके बारे में मुसलमानों के जज्बात क्या हैं, ये क्यों इतना नाजुक मसला बन गया है, इसको अगर सही तरीके से हल नहीं किया जाता तो इससे क्या मसाइल पैदा होंगे, इन मौजूदात पर उन्होंने गुफ्तगू की है। उस मौके पर चूंकि मार्शला लगा हुआ था तो इस किताब की बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। खुद उन्होंने बाद में अदालत में ये कहा भी कि मेरी मिसाल तो ऐसी है, मैं इत्मीनान के साथ फुटपाथ पर चल रहा था लेकिन गाड़ी इधर से आई और वो फुटपाथ ही पर चढ़ गई है, यानी वो इसको लेकर नहीं उठे थे। एक तहरीक उठी, उसमें बहुत हंगामा आराई शुरू हो गई, यार मार्शला लगाने की नौबत आ गई, अभी पाकिस्तान नया नया बना था। इस तरह की सूरत हाल में मसले को सुलझाने के लिए उन्होंने गोया अपना नुक्ता नज़र बयान किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस किताब में भी जो बात कही गई है उससे इत्तफाक़ या इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कि उसकी अगर ये ताबीर की जाए कि उसमें कोई फसाद बरपा करने की दावत दी गई है या लोगों को किसी चीज़ पर उकसाया गया है या बरंगेख्ता किया गया है, तो ऐसी कोई चीज़ हरगिज़ नहीं है। आप किताब को पढ़ सकते हैं, इस वक्त भी शायशुदा मौजूद है, एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ से मुझे आपको किसी को भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो मौक़िफ़ जैसे वो शाइस्ता इंसान थे, जैसे नस्तालीक शख्सियत रखते थे, उसी तरह बड़े इंशा परदास थे, खूबी के साथ उन्होंने उसको बयान कर दिया।
ठीक, नुकता बिल्कुल वाजह हो गया। अच्छा खान सर, ये जो 2-3 साल हैं 1950 से 1953 के, इसमें एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और उस डेवलपमेंट को आज के हमने देखा है कि बाज़ जदीद पढ़े लिखे लोग मौलाना मौदूदी की इस डेवलपमेंट को एक साजिशी थ्योरी के तौर पर भी पेश करते हैं, और ये कहते हैं कि बाकायदा जमात इस्लामी ने आलम अरब और वहाँ की हुकूमतों से, बादशाहतों से ताल्लुकात उस्तवार किए, और अपने इस मिशन और अपने एजेंडे की तकमील के लिए अरबों की गोया एक तरह से मदद हासिल कर ली। ہم یہ جانتے ہیں کہ 1950 میں اخوان المسلمون سے باقاعدہ جماعت اسلامی کا تعلق پیدا ہوا، پھر اس کے بعد مولانا مسعود عالم ندوی ہیں، انہوں نے عالم عرب کا دورہ کیا، اس طرح سے عاصم الحداد ہیں، انہوں نے بعض چیزوں کا ترجمہ کیا، اور 1952-53 میں باقاعدہ اخوان المسلمین نے مولانا مودودی کی بعض کتابوں کے اقتباسات اور بعض کتابچوں کا عربی میں ترجمہ کیا، ایک پینیٹریشن شروع ہوئی۔ اس کا کیا پس منظر ہے؟ ہم سب لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی حکومتوں کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی نے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی، کیا یہ ایک نیچرل آرگینک کام تھا، یہ عالم عرب کیسے مولانا مودودی سے متاثر ہونا شروع ہو گیا؟
سید اور اللہ صاحب مودودی ایک دعوت لے کے اٹھے تھے، وہ ان کے کہنے کے مطابق دینی دعوت تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں تو ایک جہانی دعوت لے کے اٹھا ہوں، پورے عالم تک مجھے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ وہ تو پیغمبروں کے طریقے پر ایک نئی جماعت اٹھا رہے تھے، ان کی دعوت یہ تھی کہ مسلمانوں تمہیں اللہ توفیق دے تو میری دعوت پر لبیک کہو، تجدید ایمان کرو اور اس جماعت اسلامی کا حصہ بنو۔ خود جماعت اسلامی نام کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو جماعت بھی دنیا میں وجود میں آئے گی وہ جماعت اسلامی ہی تو ہوگی، یعنی یہ نام اس طرح نہیں رکھا گیا جس طرح کے باقی جماعتوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی دعوت کو باقی دنیا تک بھی پہنچائیں گے، ان کی دعوت تو نہ بر صغیر تک محدود تھی نہ پاکستان تک محدود تھی۔ یا بھی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں عالمی سطح پر پوری انسانیت کو وہ دعوت دینے کے لیے اٹھا ہوں جو پیغمبروں کی دعوت ہے، میں اس دعوت کو زندہ کرنے کے لیے اٹھا ہوں۔ اس دعوت کے لیے انہوں نے جو اہداف مقرر کیے ان پر بھی ہم بعد میں گفتگو کر لیں گے، لیکن ان کی دعوت کی نوعیت یہی ہے، تو ان کو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے تھی کہ جیسے ہی حالات میسر ہوں وہ دنیا میں اپنا پیغام پہنچائے۔ ان کی کتابوں کے انگریزی تراجم بھی ہوئے، ان کی کتابوں کے فارسی تراجم بھی ہوئے، اور اسی طرح سے عربی تراجم بھی ہوئے۔ خود مولانا علی میاں نے ان کے بارے میں ان کی وفات پر جو مضمون لکھا ہے اس میں بتایا ہے کہ وہ بار بار مجھ سے بھی کہتے تھے کہ کچھ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، چنانچہ میں نے ہی ان سے کہا کہ اس مقصد کے لیے مولانا ندوی بہتر ہوں گے، یعنی مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی، وہ بہت بہتر۔ مولانا مسعود عالم ندوی عربی زبان کے بڑے بے نظیر ادیب ہیں، انہوں نے اس زمانے میں پھر دارالعروبا کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور باقاعدہ تراجم کیے۔ سفر نامہ ارض القرآن میں وہ ساتھ رہے جس میں مولانا مودودی نے ان مقامات کا سفر کیا ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں، وہاں عرب ممالک کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں رہیں، وہاں ان کے علماء سے بھی ملاقاتیں رہیں، اور اس طرح سے جو عالمی تنظیمیں بنی جیسے مؤتمر تھی، جیسے رابطہ ہے، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا۔ ان میں سے کون سی چیز ہے اس کا سازش سے کوئی معاملہ ہے؟ جو شخص دنیا بھر میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اٹھا ہو وہ دنیا بھر کے لوگوں سے روابط پیدا کرے گا، وہ بادشاہوں کو بھی پیغام پہنچائے گا، وہ ان کے ساتھ بھی تعلق پیدا کر کے ان تک دین کی دعوت پہنچانے کی صحیح کرے گا، اس میں کوئی چیز بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ وہ چونکہ ایک سیاسی جدوجہد بھی کر رہے تھے تو اس لیے لوگ ایسے مضامین پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت کیا ہمارے فکر کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ دنیا تک نہیں پہنچانا چاہتے، اس کو مختلف زبانوں میں تراجم نہیں کرا رہے، ایسے ہی جو دوسرے نقطہ نظر ہیں کیا ان میں یہ صحیح جہد نہیں کی جاتی؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، جب ایک دعوت ہی جہانی دعوت ہے، عالمگیر دعوت ہے، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہے، دنیا بھر کے لوگوں میں عرب بھی شامل ہیں، عجم بھی شامل ہیں، تو اس لیے یہ تو ایک بالکل ہی بےمانی بات ہے جو کہی جاتی ہے۔
اچھا ہم سب، یہ اخوان المسلمون نے کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ ترجمہ کیے، اور اس تحریک کے جو ایک بڑے آدمی ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی فی ضلال القرآن، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے الجہاد فی الاسلام کا بےتحاشا دفعہ مطالعہ کیا۔ تو یہ جس وقت عرب دنیا میں مولانا مودودی کا لٹریچر گیا تو وہاں پر بھی کوئی طلب، کوئی پیاس، کوئی محرومی موجود تھی، کیا اس کا بھی پس منظر وہی تھا جو برصغیر میں تھا؟ ظاہری بات ہے استبداد ان کو بھی چھوڑ کے گیا ہوا تھا، تو دوبارہ سے وہی تحریک بپا کرنا، وہ کیچ کیسے کر لیا ان لوگوں نے، اور اس تحریک نے مولانا مودودی کے نیریٹو کو کیسے آگے بڑھایا؟
ساری دنیا میں مسلمانوں کو وہی مسئلہ درپیش تھا جس پر ہم اس سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، یعنی مسلمانوں کی تینوں سلطنتیں ختم ہو گئی تھیں، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اب استعمار اپنی صوابدید کے مطابق بہت سے ملک بنا کے چلا گیا تھا۔ وہی ممالک ہیں جن کو ہم 50 سے زیادہ مسلمان ممالک کی صورت میں دیکھتے ہیں، ان میں ہر جگہ اضطراب بھی تھا، بے چینی بھی تھی، یعنی ایک تہذیبی روایت منقطع ہوئی، مسلمان دنیا بھر میں محکوم ہوئے، اب انہیں کیا کرنا ہے، کہاں سے بات کرنی ہے؟ تو اس میں جس طرح دوسرے بہت سے لوگ کچھ حل بتا رہے تھے، کچھ رہنمائی کر رہے تھے، علامہ اقبال بھی یہی کام کر رہے تھے۔ तुर्की में, मिस्र में बहुत सी शख्सियात थी जो यही काम कर रहे थे। जमालुद्दीन अफगानी की दावत क्या थी, रशीद रज़ा की दावत क्या थी, मुफ्ती मोहम्मद अब्दहू की दावत क्या थी, सब लोग अपने अपने तरीके पर मसले का हल बता रहे थे। जब मौलाना सैयद अबुल्ला साहेब मौदूदी ने यह बताया कि हमको वहाँ से बात शुरू करनी चाहिए जहाँ से पैगंबर आकर बात शुरू करते हैं, और इस तरह मुसलमान कौम को मुसलमान कौम के बजाय वो एक जहानी तहरीक बनाना चाहिए जो पैगंबरों के पेश नज़र रहा है, तो इस बात ने बहुत से जहनों को अपील किया। खुद हमें जवानी के ज़माने में गैर मामूली तरीके से मुतासर किया, उसी के पेश नज़र बहुत सी चीज़ें हमने खुद इख्तियार की, पढ़ा, और बहुत से मामला हुए इंडोनेशिया में, मलेशिया में, और बहुत से ममालिक में बहुत से नौजवानों तक तो बात पहुंची। इख्वान के लोग भी उससे मुतासर हुए, इख्वान की पदा इस फिक्र से नहीं हुई थी, लेकिन बतदरीज ख़ास तौर पर सैयद कुतुब और उनके पाए के लोग मुतासर भी हुए। वो तो बारहा उनका जिक्र बहुत ही मोहब्बत के साथ करते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ा फितरी तर्ज अमल है, सही होना चाहिए। दावत उठी है तो दावत को लोग सुनेंगे, समझेंगे, उसको जमातें भी सुनेंगी, हुक्मरान भी सुनेंगे, उलमा भी सुनेंगे, और हर आदमी जो कुछ उससे तासुर लेगा उसके लिहाज से उसके साथ ताल्लुक़ का इजहार भी करेगा, और अगर अपने तौर पर उन्हीं खतूत पर कोई जद्दोजहद कर सकता है तो वो भी ज़रूर करेगा।
तो बिल्कुल वाज़ह हो गया, जमात इस्लामी की तारीख़ और उसकी ज़िंदगी में जो बड़े मराहल और अदवार गुजरे हैं उन पर गांधी साहब का हम तजिया तलब कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम मरहला मरहला उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर इस जमात के बानी दुनिया से रुख्सत हो जाते हैं, और फिर उनके बड़े इकदाम का तनकीदी और तजियाती मुताला भी होगा। इंशाल्लाह वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अब तक आप लोग का बहुत शुक्रिया।